पिंगानस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री विजय दशमी महोत्सव की जय। इस दिवस को विजय दशमी क्यों कहा गया है?
श्री रामचंद्र रावण को आज
विजय, रावण के ऊपर श्री राम ने विजय प्राप्त किया, और दशमी क्यों? दसवीं तिथि है, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, तो विजय दशमी की इस तिथि पर श्री राम ने विजय प्राप्त किया था। राम विजय, और एक इसका नाम क्या है इस दिन का? साधारणतः लोग जब कहते हैं दशहरा, ये दशहरा नाम क्यों पड़ा?
दस सिर वाला हारा था,
दशाना वो तो दश तो हुआ वध, लेकिन दशहरा नाम क्यों लगा? ये शब्द कहाँ से आया? दशम और अहर, दशम तो दसवीं तिथि, दसवीं, और अहर, अहर क्या है? दिन। अहर निश, निश मतलब रात, अहर मतलब दिन। जीवन बीमा वाले कहते हैं ना, अहर निश सेवाम यहम, दिन रात आपकी सेवा में है। अहर निश, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो अहर अर्थात दिन, तो दशम अहर, परंतु उसका अपभ्रंश होके दशहरा हो गया। ऐसे अपभ्रंश अनेक बार होता है ना, तो इसलिए दशहरा नाम हो गया इसका। यह राम विजय उत्सव भी कहते हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंद में दसवें अध्याय में भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन है। अध्याय का शीर्षक ही है भगवान रामचंद्र की लीलाएं। तभी देखिए रामचंद्र की लीलाएं इतने संक्षेप में यहाँ पर क्यों दी हुई है? केवल दो अध्याय हैं, दसवां और ग्यारहवां। दसवां अध्याय है भगवान रामचंद्र की लीलाएं, और ग्यारहवां है भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना, अर्थात राम राज्य का वर्णन है। तो भगवान रामचंद्र की लीलाएं इतनी विशाल हैं, तो केवल दो अध्यायों में क्यों सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है?
विस्तार से रामायण में वर्णन,
हाँ विस्तार में रामायण में किया है तो सही है। तो अगे नेक्स्ट स्टेप अगला कदम।
श्री कृष्ण की लीला का
हाँ
बहुत बार उन्होंने परीक्षित महाराज ने इन लीलाओं को सुना हुआ है।
हाँ ये सही बात है। तो न केवल इससे ये साबित होता है और कि पहले रामायण प्राचीन काल से प्रचलित था। यहाँ पे रामायण कब से है, कौन से युग से, त्रेता युग। और ये शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का वार्तालाप कब हुआ, द्वापर के अंत में। तो इतने साल बीत गए फिर भी रामायण की कथा थी। क्यों इतने आज भी है कलयुग में, तो आज भी रामायण की कथा, वाल्मीकि जी की रामायण अभी तक विद्यमान क्यों है, किस। हाँ
बहुत प्रचलित है।
हाँ क्यों।
ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, यावत
हाँ
सरितश्च महीतले, यावत क्या है कि जब
यावत
तक
चंद्र दिवाकर
चंद्र दिवाकर।
तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था वाल्मीकि जी को। जब वाल्मीकि के सामने भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, प्रोत्साहन दिया कि आप श्री राम की लीलाएं लिखो और आपके हृदय के अंतर अंतःकरण से ये लीलाएं स्फुरित होंगी और जो भी आपके मन में आएंगे, ये स्फूर्ति आएगी आपके मन में, ये सच होगा। जो भी आप श्री राम के बारे में लिखेंगे, वहाँ तो उस समय तो लिखना तो था नहीं, रचना करेंगे। लिखना ये तो कलयुग में शुरू हुआ, इसके पहले तो लिखाई नहीं होती थी, केवल कीर्तन और श्रवण होता था। तो रचना इतनी तेज बुद्धि थी, इतनी तेज स्मृति शक्ति थी कि रचना करके उनको सब याद था। तो जो जो भी आप जिन शब्दों की रचना आप करोगे वह सत्य ही रहेंगे, निकलेंगे, एक भी वचन आपका झूठ नहीं रहेगा। और जब तक नदियां बहेंगी पृथ्वी पर और पहाड़ रहेंगे पृथ्वी पर, तब तक आपकी रचना यहाँ पर पृथ्वीलोक पर विद्यमान रहेगी। कितना बड़ा आशीर्वाद है ये। वैसे कितने सारे ग्रंथ हैं जिन्होंने लोगों ने लिखा है, फिर थोड़े दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं और उस लेखक का नाम भी लोग नहीं जानते हैं। जो लोकप्रिय थे 100 साल पहले, आज उनको भूल जाते हैं लोग, अभी नए लेखक आ जाते हैं। तो किसी का ग्रंथ, किसी की रचना यदि इतने लाखों लाखों साल बाद भी हो जाए और रहे, विद्यमान रहे, तो कितनी बड़ी बात है। तो वाल्मीकि मुनि को ऐसे आशीर्वाद मिला था ब्रह्मा जी से। तो ये वाल्मीकि की कथाएं करने की जो प्रथा है समाज में, वो तब से चली आ रही है, जब से वाल्मीकि मुनि ने लव और कुश को सुनाया और लव और कुश ने कंठस्थ किया। कैसे कंठस्थ किया, केवल सुन के, बार बार सुना उन्होंने, बल्कि श्रुति धर हुए होंगे, एक बार सुन के कंठस्थ हो गया उनको। और जगह जगह जाकर वो वाल्मीकि कथा करने लगे, यहाँ तक कि श्री राम के दरबार में भी गए और श्री राम ने भी स्वयं अपनी ही कथा उनके पुत्रों के द्वारा सुनी, की गई सुनी। लेकिन उस समय राम को पता नहीं था ये उन्हीं के पुत्र हैं। तो ये राम कथा, राम लीला वर्णन तब से शुरू हो गया। और फिर त्रेता युग का अंत हो गया, द्वापर युग प्रारंभ हुआ, द्वापर युग के अंत में कितने साल, लाखों लाखों साल बीत गए। तो आज भी भारत के अनेक प्रांतों में ये एक प्रथा है, बच्चे ये राम कथा सुनते हैं, बचपन से ही लोगों को राम लीला के बारे में जानकारी होती है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने भी ये अपने बचपन में सुना था, जैसे सारे बच्चे सुनते थे। तो रामलीला अच्छी तरह से वो जानते थे, कृष्ण लीला इतनी तरह इतने विस्तार में वर्णन नहीं था, जब तक कि श्रीमद् भागवतम नहीं आया तो श्री कृष्ण लीला की जानकारी इतनी गहराई में लोगों को नहीं थी, इतने विस्तार में नहीं थी। हिंदी ये तो ना तुम्हारा हिंदी ये तो समझते का हिंदी समझते नहीं समझते मत क्या करे सर कसा हाँ थोड़े कई है अनेक जना मराठी समझत नहीं समझल बस तुम्हें समझल मत तो बचपन से ही परीक्षित महाराज ने रामलीला सुनी थी तो रामलीलाओं के बारे में सबको पता था, लेकिन कृष्ण लीला के बारे में इतने विस्तार में सुना नहीं था। कहीं यहाँ वहाँ कुछ चर्चा होती थी, परंतु हमें याद रखना है कि कृष्ण लीला बस थोड़े ही समय पहले प्रकट हुई थी, इसलिए इसके बारे में इतनी लिखाई वगैरह सब हुई नहीं थी। वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना कब की? त्रेता युग में की, वो सही बात है, लेकिन खास करके कब, किस समय, तारीख नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सही बात है, लेकिन उसमें भी किस समय,
जब उनके रावण का वध हो गया फिर वो अपने राज्य कर रहे थे।
ठीक है, और
जब उनका राजाभिषेक हो चुका था, सीता जी वनवास में गई थी उस समय,
तो लौटने के बाद आप यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो प्रारंभ में आप देखोगे कि वाल्मीकि मुनि पहले अपने रचनाओं में वो भूतकाल का प्रयोग करते हैं और अचानक से फिर भविष्यकाल शुरू हो जाता है। हाँ, तो ठीक उस समय से, मतलब उस समय को वो रचना कर रहे थे। तो जब श्री राम यहाँ लीला कर रहे थे, अयोध्या लौट के आए थे, रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था, जब आए थे, राज्याभिषेक भी हो गया, उस समय वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे और उन्होंने लीला करना, रचना करना शुरू कर दिया अपने मन में। तो फिर इतने साल बीत गए थे, परंतु कृष्ण लीला के बाद कृष्ण का तिरुभाव हुआ ही बस था, और तब जाकर शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये सुनाई भागवतम। तो श्री कृष्ण की लीला की समाप्ति और श्रीमद् भागवतम में कितना अंतर था? तुरंत हो गया,
परीक्षित महाराज का बस जीवन था बीच में,
बस थोड़े साल। जब अर्जुन द्वारका से लौट के आए और युधिष्ठिर महाराज ने सब जगह अशुभ लक्षण देखे और उनको पता चला कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, या तो अर्जुन को कुछ हो गया है इसलिए इतने दिनों से वापस नहीं आए हैं अर्जुन, और अर्जुन जब अंततः लौट के आए तो उनके चेहरे से तेज पूरा निकल चुका था। अर्जुन बहुत ही उदास लग रहे थे, दुखी लग रहे थे, और तब अर्जुन से पता चला कि श्री कृष्ण का तिरुभाव हो चुका है, स्वधाम लौट के चले गए हैं श्री कृष्ण। तो और अर्जुन शोक कर रहे थे कि मैं श्री कृष्ण की रानियों को ले जा रहा था, वही मेरा गांडीव धनुष है, वो मैं वही अर्जुन हूँ, परंतु थोड़े साधारण डाकू लोग आ गए, डकैत आ गए, और उनको मैं परास्त नहीं कर सका, मैं वही अर्जुन, गांडी वही, सब कुछ वही, परंतु मैं हार गया उनके सामने। तो अर्जुन पूरी तरह से निराश होकर आए थे, और फिर युधिष्ठिर महाराज भी समझ गए कि श्री कृष्ण छोड़कर पृथ्वी स्वधाम चले गए। तो श्री कृष्ण का स्वधाम जाना ये कलयुग का प्रारंभ है, तो कलयुग उस समय से शुरू होता है। और उस समय पांडवों ने क्या किया, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने देखा और समझ लिया कि ये परिस्थिति है कि श्री कृष्ण स्वधाम लौट के गए हैं, तो तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अभी वनवास में जाना चाहिए, हमारे राज्य को त्याग करना चाहिए। फिर सारे निकल पड़े, पांचों पांडव और उनके साथ में द्रौपदी देवी भी आ गईं। उस समय उन्होंने परीक्षित महाराज को राजगद्दी पर बिठाया। परीक्षित महाराज को क्यों, वो तो पोते थे। हाँ, पोते थे ना,
पुत्र का तो
कुरुक्षेत्र युद्ध में
अश्वत्थामा ने मार
दिया। हाँ, पुत्र तो थे ही नहीं बचे। हाँ, अभिमन्यु थे नहीं, उनकी हत्या तो करवाई महारथियों ने, और द्रौपदी के अन्य जो पुत्र थे उनकी हत्या अश्वत्थामा ने कर ली, तो कोई बचा ही नहीं था। तो उनका एक ही वंशज बच गया था, वह है परीक्षित। तो परीक्षित महाराज उस समय तरुण थे, तो राजगद्दी पर बिठाया, राज्याभिषेक किया, और तुरंत युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ और पत्नी के साथ निकल पड़े हिमालय की ओर। बद्रिकाश्रम तक गए, उधर से भी और ऊपर गए हिमालय में। तो उतने ही साल बीते। फिर जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा श्रृंगी ऋषि से, फिर उन्होंने सब कुछ त्याग करके गंगा के तट में आके सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनी। इसका मतलब है जितना भी परीक्षित महाराज के जीवन की अवधि होगी, लगभग उससे थोड़ा कम बल्कि, उतने साल बीत गए बस। तो अभी अभी इसकी रचना हुई। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। तो इसका शब्द भेद करके कौन समझाएंगे इस श्लोक का?
कृष्ण स्वधामोपगते, भगवान कृष्ण के अपने धाम चले जाने पर धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म ज्ञान आदि के साथ, तो भगवान जब थे तो ये सब चीजें थी, गए तो सब लेकर के चले गए। कलव नष्ट दृशाम ऐसा पुराण अर्कः, यह पुराण जो सूर्य के समान है, ये कलयुग में नष्ट दृशाम, जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनको यह दोनोदिता, यह उदित हुआ है और सबको दृष्टि प्रदान करेगा, प्रकाश।
बहुत अच्छा। कलो नष्ट दृशाम अर्थात जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, दृशाम उनके लिए, किन का कब, कलो कलयुग में। तो कलयुग में जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुन उदित, अर्क अर्थात सूर्य। तो ये पुराण कौन सा पुराण? ये भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम, सबसे श्रेष्ठ अमल पुराण। तो जबकि कलयुग प्रारंभ हो चुका है और इस कलयुग में लोगों की दृष्टि समाप्त हो चुकी है, और उस समय ये भागवतम का उदय हुआ है जो कि सूर्य के समान है, सूर्य के समान भागवत का उदय हुआ है। अधुना, अधुना मतलब अभी अभी, अभी अभी हुआ। तो क्योंकि भगवान कृष्ण की कथाएं भी अभी अभी समाप्त हुई थी, इसलिए इसने इतने विस्तार में इसका कोई वर्णन कहीं था नहीं। जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने निश्चित ही सारे भगवान के जितने भी लीलाओं को देखा था, वो आपस में चर्चा करते थे, परंतु ऐसे इकट्ठे किसी ने इसकी रचना एक ग्रंथ के रूप में नहीं की थी। तो परीक्षित महाराज के द्वारा ही भगवान उनकी कथाओं को सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। परंतु रामायण के बारे में ऐसे नहीं था, रामायण के हुए हुए कितने लाखों लाखों साल बीत गए थे, और रामायण की कथा करना ये कितनी पुरानी प्रथा हो गई थी, प्राचीन काल से चलती आ रही थी। तो परीक्षित महाराज को रामायण के बारे में गहराई विस्तार में सुनना आवश्यक नहीं था, क्योंकि वो पहले से सुन चुके थे। और परीक्षित महाराज को केवल 7 दिन बचे थे, और इसीलिए कृष्ण कथा सुनानी थी, इस पर ज़्यादा जोर था उनको। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जल्दी से 2 अध्यायों में सारी रामलीला समाप्त कर ली। जिसके लिए कि वाल्मीकि मुनि को कितने श्लोक लगे, 24,000 श्लोक लगे, और वो 2 अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने समाप्त कर लिया। और वो कहते भी है कि यही कारण है, क्योंकि हे परीक्षित, आपने बचपन से ये सब सुना है, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं इन बातों को। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी भी सोच रहे थे अभी 9वें स्कंद तक तो पहुंच गए, अभी जल्दी से वृंदावन लीला और कृष्ण लीला शुरू करनी है। अब तक श्रीमद् भागवतम में अनेक लीलाओं का वर्णन तो हुआ, कृष्ण लीला का भी हुआ, परंतु वो तो पहले स्कंद में था, और पहले स्कंद में विशेष करके द्वारका की लीलाएं थी इत्यादि, और जो भी वृंदावन आदि की लीला थी बहुत संक्षेप में, जैसे उद्धव और विदुर जी के बीच में जब संवाद होता है उस समय। तो यहाँ वहाँ केवल भगवान कृष्ण का उल्लेख है, परंतु श्रीमद् भागवतम का मुख्य उद्देश्य है श्री कृष्ण लीला का वर्णन करना। तो इसलिए समय बीतते जा रहा था, अभी 9 स्कंद के लिए कई दिन बीत चुके होंगे परीक्षित महाराज के साथ शुकदेव गोस्वामी की, तो इसलिए उन्होंने संक्षेप में ये सब कह दिया, सारांश दिया उन्होंने रामायण का। और वाल्मीकि रामायण तो मूल रामायण है, परंतु उनके रामायण पर आधारित अन्य कितने सारे रामायणों की रचना हुई है, लेकिन आधार या बुनियाद वाल्मीकि जी के रामायण है। इसलिए प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि जहाँ तक प्रमाण की बात आती है तो वाल्मीकि जी का रामायण ही प्रमाण है। तो अन्य ग्रंथों को भी चाहिए कि वो इनसे मिलते जुलते रहें, जो सिद्धांत हैं आदि। यदि वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध कोई बात है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भले हम ऐसी भी कोई बातें स्वीकार कर सकते हैं जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में न हो, परंतु वाल्मीकि रामायण से विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अन्य कितने रामायण हैं, उनके नाम बता सकते हैं आपको? 1, 2, 4, 5, 6। कंब रामायण कहाँ पे, कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। और कृत्तिवास रामायण कौन सी भाषा में? बंगला भाषा में। और रामचरितमानस सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा विरचित, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। और वो एक रचना छोटी सी है, वो तो अभी थोड़ी देर साल पहले हुआ, वो भी संक्षिप्त रूप में है, ये भी बहुत सुंदर है। हम पी यात्रा में भी हम बच्चे गा रहे थे,
मराठी में गीत रामायण,
गीत रामायण मराठी में, तेलुगु में। तेलुगु भाषी है कोई यहाँ पर? नहीं, तेलुगु हर एक भाषा में, अब देखोगे नेपाली भाषा में है, और हर एक भाषा में आप पाओगे रामायण, परंतु सब मूल रूप से वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। तो वाल्मीकि जी की रामायण हमारे लिए स्वर्ण मापदंड है, गोल्ड स्टैंडर्ड। जो भी कुछ हमें नाप तोल करना है कि रामायण की कथा क्या है, पहले वाल्मीकि रामायण देखनी है। और श्रीमद् भागवत का भी तो वही स्थान है, परंतु संक्षेप में यह सब हुआ। तो यहाँ ये श्लोक है जिसमें शुकदेव गोस्वामी अब श्री कृष्ण विजय का वर्णन एक श्लोक में ही कर रहे हैं। जब रावण की हत्या हुई श्री राम के द्वारा, तो एक श्लोक में समाप्त कर देते हैं। एवं क्षिपं धनुषि संधितं उत्ससर्ज, बाणं स वज्रमिव तद्धृदयं बिभेद, सोसृग वमन दशमुखैर्न्यपत
यपति विमानाः दाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः
एवं क्षिपन्धनुषि सन्धितमुत्ससजम्
एवं क्षिपन्धनुषि सन्धितमुत्ससर्ज
बाणं स वज्रमिव तद्हृदयं बिभेद
बाणं स वज्रमिव तद्हृदयं बिभेद
सोऽसृग्वमन्
दशमुखैर्न्यपतद्विमानाः
दाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः
दाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः एवं क्षिपन्धनुषि सन्धितमुत्ससर्ज
बाणं
स वज्रमिव तद्हृदयं बिभेद
सोऽसृग्वमन्दशमुखैर्यमपतद्विमानाः
जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा जो रावण के हृदय में वज्र के समान बेध गया। इसे देखकर रावण के अनुयायी आर्तनाद करते हुए चिल्लाए, हाय हाय क्या हो गया, क्योंकि रावण अपने दसों मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। तो मैं आप में से जो यदि स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं तो ये याद रखिए, वापस आना होगा। पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति। अच्छा, अरे प्रभुपाद जी भी इसी श्लोक को बोलते हैं। अच्छा, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्यों के फल चुक जाते हैं तो स्वर्ग का भोग करने वाले पुनः पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इस जगत के सकाम कर्म ऐसे हैं कि कोई चाहे पुण्य करे या पाप, उसे इस शरीर के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना होता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु की माया के चंगुल से छूटा नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त महान साम्राज्य का राजपद मिल गया था, किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप कर्म करने के कारण उसके सारे पुण्यकर्मों के फल विनष्ट हो गए थे। यदि कोई किसी महापुरुष का विशेष रूप से भगवान का अपमान करता है तो वह निस्संदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों के फल से विहीन होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे और समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहे, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर से ऊपर चला जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएं होती हैं, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर होने पर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थिर रहता जाता है। सगुणान समतीत यहीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। रावण या उस जैसे अन्य लोग भले ही इस भौतिक संसार में शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यवान हों, किंतु उनके पद सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अंततः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रकृति के नियम में पूर्णतः अधीन हैं। प्रकृते ही क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत मोहग्रस्त जीव अपने को उन सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवद गीता के तीसरे श्लोक के 27वें अध्याय। किसी को न तो अपने उच्च स्थान का घमंड होना चाहिए और न ही अपने को प्रकृति के नियम से स्वतंत्र मानकर रावण की तरह कर्म करना चाहिए। तो ये अंतिम जो वाक्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कोई दार्शनिक कोई उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं आज के दिन पर, जिस दिन पर श्री राम ने रावण का वध किया था, तो सबसे प्रमुख उपदेश ये है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। किसी को न तो अपने उच्च स्थान का घमंड होना चाहिए और न ही अपने को प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र मानकर रावण की तरह कर्म करना चाहिए। तो व्यक्ति जितना भी ऐश्वर्यवान क्यों न हो, जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जितने भी ऊंचे पद पर क्यों न वो आसीन हो, फिर भी यदि वो भगवान के विरुद्ध कार्य करता है तो उसका विनाश निश्चित है। और इसी बात को दर्शाने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए श्री राम ने रावण की हत्या की। वैसे तो भगवान की लीलाओं को के बारे में ऐसे कहा जा सकता है कि एक लीला से अनेक उपदेश हम ग्रहण कर सकते हैं, तो उसमें ये एक उपदेश है। और ये भगवद गीता में भी हम देखते हैं कि कौरव भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कितने शक्तिशाली थे, उनके कितने अक्षौहिणी वर्ग थे, 11 थे कौरवों के, और पांडवों के कितने थे, 7 थे केवल। तो भौतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो कौरवों की सेना शक्तिशाली थी, परंतु कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। यद्यपि उन्होंने अस्त्र उठाने न उठाने का व्रत लिया था, फिर भी केवल कृष्ण की उपस्थिति पांडवों के कक्ष में ये पांडवों के विजय का कारण हो गया। और जैसा कि भगवद गीता के अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं, क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर ममा। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ पर गांडीव धारी अर्जुन है, तत्र श्री विजय भूति नीति मतिर्ममा। तो मेरा मत ये है, संजय कहते हैं, ये सारी चीजें सौंदर्य ऐश्वर्य कल्याण विजय नैतिकता, ये सारी चीजें वहीं होंगी जहाँ पर भगवान और उनके भक्त हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई भगवान का भक्त नहीं है या भगवान के भक्तों के साथ में नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, तो चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली भयंकर आदमी क्यों न हो, उसका विनाश निश्चित है। रावण हो, हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, ऐसे कितने इतिहास में बड़े बड़े असुर हुए, और सारे ब्रह्मांड के नाक में दम बन गए वो। ऐसे भी बताया जाता है कि उनके नाम मात्र को सुनकर जो है देवगण भी कांपने लगते थे, भ्रुकुटियों को हिलाकर भी देवता डर जाते थे। इतने शक्तिशाली बड़े बड़े राक्षस और असुर थे, परंतु उनका समय सीमित था क्योंकि उन्होंने भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति घोर अपराध किए थे। तो रावण ने भी कितना बड़ा अपराध किया था, श्री राम को मिलने के पहले भी तो कितने अपराध किए थे। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में ये रावण की कथा जब आती है तो ये बताया जाता है कि रावण की हार निश्चित क्यों थी, क्योंकि रावण के अपराधों का जो पात्र है वो भर गया था। इतने शाप की पूंजी एकत्र की थी रावण ने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हमें एकत्र करनी चाहिए आशीर्वादों की पूंजी, भंडार, परंतु रावण ने यहाँ वहां से इकट्ठा किया था शापों की पूंजी। कोई याद है आपको कौन से शाप मिले थे रावण को, कहाँ कहाँ किन किन से?
एक तो सिंह, एक तो कुबेर के वो जो कि किसी स्त्री का स्पर्श करेंगे तो वर तो उनका मृत्यु स्मृति हो जाएगी।
हाँ, तो ये एक साप कुबेर का था और एक राज एक सूर्यवंशी राजा थे, अनार्थ शायद इनका नाम था। उनको हरा के अपमानित किया और फिर उन्होंने भी श्राप दिया उनको। ऐसे वेदवती थी जो सीता थी, माया सीता, उन्होंने भी श्राप दे दिया। अप्सरा थी, उन्होंने भी श्राप दे दिया। तो ऐसे कितने सारे श्राप मिले। और दशरथ महाराज ने भी शायद श्राप दिया कि जो भी है, अनेकों ने श्राप दिया। तो इसलिए समय सीमित थी, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो व्यक्ति का विनाश निश्चित होता है। तो इसलिए चाहे वो भगवद गीता महाभारत की कथा हो या रामायण की कथा हो, उपदेश एक ही है कि हमें सदैव भगवान और उनके भक्तों के पक्ष में रहना चाहिए। जो भगवान के विरोध में जाएगा विनाश होगा ही होगा। भीष्म देव भगवान के भक्त थे परंतु कृष्ण के विरुद्ध पक्ष में गए, भगवान के भक्तों के विरोध में उन्होंने कार्य किया। और सबसे शक्तिशाली योद्धा संपूर्ण युद्ध भूमि में भीष्म देव थे, फिर भी द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा इत्यादि सारे के सारे हार गए। तो ये विजयदशमी के ऊपर भी सबसे महत्वपूर्ण एक संदेश, एक उपदेश हम सबके लिए है। और रावण की हत्या के बारे में और क्या हम सीख सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण उपदेश है। और क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? श्री राम ने अपने तेज, जैसे यहां बताते हैं, भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा जो रावण के हृदय में वज्र के समान बेध गया। तो इसके पहले भगवान ने क्या किया था? अपने बाण सर काटे थे। कितने सर थे रावण के? 10। इसलिए उनका नाम है दशानन। आनन अर्थात मुख, दशानन, दश संस्कृत में 10 को दश बोलते हैं ना, और दशग्रीव भी उनका नाम था। वास्तव में मूल नाम वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशग्रीव था, ग्रीव अर्थात गर्दन। तो 10 गर्दन वाले, 10 मुख, 10 सिर वाले रावण, रावण बाद में पड़ गया जो सबको रुलाता है। इतना दुष्ट था ना, सब पहले से ही सबको रुलाना शुरू कर दिया उसने, इसलिए नाम रावण पड़ गया। तो 10 ऐसे मुख थे और श्री राम ने जैसे ही एक सर को काट दिया और दूसरे सर को काटने की तैयारी कर रहे थे, बाण लगा रहे थे, तो क्या हो गया? पहला सर फिर से प्रकट हो गया, दूसरा सर काट दिया और तीसरे को मारने गए तो दूसरा फिर से प्रकट हो गया। तो जैसे जैसे श्री राम रावण के सरों को काटते जा रहे थे, वैसे वैसे ये ऊपर आते रहे फिर से, क्योंकि ऐसे वरदान मिला था रावण को। तो इसलिए श्री राम ने सोचा कि अब क्या किया जाए, गर्दनों को काट के भी इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही है, तो फिर उन्होंने सोचा अभी हृदय पे ही मारना ठीक रहेगा। और हृदय पे सीधे जब बाण निशाने पे लग गया, राम का बाण तो कभी चूकता नहीं है, सही दिशा में सही निशाने पे लग ही जाता है। हम्पी में भी हम चर्चा कर रहे थे, राम बाण उपाय है ना, जब कोई उपाय ऐसे है कि जो कभी असफल नहीं होगा तो हम कहते हैं राम बाण उपाय है। डॉक्टरी में भी ऐसा होता है ना, कभी कभी कहते हैं ये राम बाण उपाय औषध है आपके लिए, ये ले लीजिए दवाई, इससे आप ठीक जरूर हो जाओगे। तो ऐसे जहां भगवान राम तीर छोड़ते हैं तो वहां श्री राम अपने उद्देश्य में सफल होंगे ही। तो इस घटना से, इस लीला से हम क्या सीख सकते हैं? कोई ग्रहणीय उपदेश? हमारी इच्छाएं इन सरों के समान है, हम सोच रहे हैं चलो इसको ये काट दें वो काट दें, फिर से वो आ जाती। तो इसलिए हृदय का परिवर्तन फिर हमें उसके लिए प्रयास करना है। तो ऐसे बहुत सारे उपदेश ग्रहण करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर श्री राम अपने वीर रस का आस्वादन करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनको बड़ा आनंद आ रहा है, वीर रस का आनंद का अनुभव करके रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो रावण ने भगवान श्री राम को वीर रस का आस्वादन करा के आनंद दिया। तो भगवान को आनंद दिलाना ये भक्ति है, इसलिए रावण परम भक्त है, सही है ना? नहीं, बात देखिए, मैंने गलती कुछ कही, गलत बात कही थी। भक्ति क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है ना। रावण ने भगवान राम को प्रसन्न किया, कैसे किया? वीर रस का आस्वादन करा कि राम को चाहिए था, वो मैं भी आके युद्ध करना चाहता हूँ, गोलोक वृंदावन में किसी से युद्ध नहीं कर सकता हूँ, सब मेरे भक्त ही हैं। तो आए, भगवान राम को प्रसन्न किया उन्होंने, और जो भगवान को प्रसन्न करता है वो भगवान का भक्त, यही भक्ति है। समसिद्धिर हरितोषणम, जीवन की सफलता इसी में है कि हम हरि को संतुष्ट करें। तो रावण ने भगवान को संतुष्ट किया तो फिर उन्होंने भक्ति की। रावण इसका मतलब है वो परम भक्त है, नहीं? किसी की आप में से किसने भक्त इस निष्कर्ष से सहमत है? कोई नहीं। कितने भक्त सहमत नहीं है? तो क्यों नहीं सहमत है? बीच में वो बहुत सारे भक्त हैं जो ना सहमत है ना असहमत। तो क्यों नहीं सहमत है?
जो रावण का भाव था वो प्रतिकूल था ना, भगवान को संतुष्ट करने का नहीं, अनुकूल भाव नहीं था।
तो आगे बढ़ाओ।
तो इसलिए रावण जो है वो शुद्ध भक्त के इसमें नहीं है।
हाँ, बहुत अच्छा। तो भक्ति हृदय की बात होती है। हृदय से जब व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, और शास्त्रोक्त पद्धति से वो कार्य करके भगवान को संतुष्ट करता है, तो फिर वो भक्त कहलाता है। तो केवल भगवान को प्रसन्न करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। गलती से भगवान प्रसन्न हो गए तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति वो है जहाँ व्यक्ति चाहता है कि भगवान को मैं प्रसन्न करूँ। जब उसके हृदय में तीव्र इच्छा होती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तब जाकर वो भक्त कहलाता है, अन्यथा नहीं। दूसरी ओर कोई भगवान को नाराज करे, क्रोधित करे, तो वो भक्त तो नहीं हो सकता ना। सही है ना? सब लोग ऐसे ही देख रहे हैं। सही है कि नहीं? हाँ, जो भगवान को असंतुष्ट करते हैं वो भगवान के भक्त नहीं है। तो माता यशोदा ने कृष्ण को दूध पीते समय नीचे रख दिया, और जो दूध सिगड़ी के ऊपर था उसको देखने के लिए गई। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, तो माता यशोदा ने कृष्ण को असंतुष्ट किया, इसलिए माता यशोदा भक्त नहीं है। सही है ना? नहीं, देखो लॉजिक की बात हमको तो बताओ, हमारी गलती कहाँ हुई ये बताओ। हाँ,
उनका भाव भगवान को अप्रसन्न करने का नहीं था, उनका भाव भगवान को प्रसन्न करने का था।
बहुत अच्छा, तो यही भाव की बात है। यद्यपि माता यशोदा ने भगवान को अप्रसन्न किया, परंतु उनका भाव था भगवान को प्रसन्न करना है मुझे। माता यशोदा के जीवन में सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही रहता था। हर छोटा कार्य सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही था। परंतु जब एक माँ होती है तो कभी बच्चे को डांटेगी, कभी कुछ करेगी, बच्चा गुस्सा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि माँ के हृदय में बच्चे के प्रति प्रेम नहीं रहता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये दो उदाहरण देते हैं जब वो भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभिक भाग पर अपनी टीका करते हैं। तो आप सब ने भक्ति शास्त्री की है, भक्ति शास्त्री कितने भक्तों ने की है, तो ये सुना होगा ना आपने उस समय भक्ति शास्त्री के दौरान। नहीं, तो ये उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं। भक्ति की परिभाषा जो कौन से श्लोक में आती है भक्ति रसामृत सिंधु में? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो आनुकूल्येन, ये कि अनुकूल भाव से किया जाना चाहिए। जो भी सेवा भगवान की हम करते हैं अनुकूल भाव से किया जाना चाहिए। यदि अनुकूल भाव नहीं है तो उसे भक्ति हम नहीं कह सकते। तो इतना पर्याप्त नहीं है कि कोई भगवान की को प्रसन्न करे, इतना नहीं, भाव भी अनुकूल होना चाहिए। और यदि भाव सही हो, हृदय में प्रेम हो, तो चाहे भगवान असंतुष्ट हो या संतुष्ट हो, वो व्यक्ति भक्त ही कहलाएगा। और जब भक्त के हृदय में प्रेम रहता है, और जब भगवान नाराज हो जाते हैं, अप्रसन्न भी यदि हो जाते हैं, वास्तव में वो प्रसन्न है, क्योंकि ये उनकी लीला है। और लीला के अंतर्गत इस प्रकार के रस का भी वो आस्वादन करना चाहते हैं। तो माता यशोदा के साथ श्री कृष्ण वात्सल्य रस का स्वाद ले रहे थे। जब गोपियां श्री कृष्ण को अपशब्द कहती हैं, कभी उनको बांध देते हैं कृष्ण को, तो उस समय भी वो माधुरी रस का आस्वादन करते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वास्तव में वो प्रसन्न है। इस प्रकार से भक्ति के सूक्ष्म सिद्धांतों को हमें जान लेना चाहिए। तो इस तिथि पर श्री रामचंद्र ने रावण का वध करके हमें इतने सारे उपदेश दिए। और भी बहुत विषय तो बहुत लंबा है, तो वहाँ पर सारे रावण के जो अनुयायी थे, उनके जो सैनिक थे, उनकी पत्नियाँ थीं, रानियाँ वगैरह, वो सब फिर दौड़ के आए, सब निराश हो गए। आगे चल के शुकदेव गोस्वामी फिर इस कथा को आगे रखते हैं। श्री रामचंद्र विजयोत्सव की जय, श्री विजय दशमी की जय, श्रील मध्वाचार्य की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल। किसी के कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
रामायण में अगर हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में बाल्य कांड है, लेकिन भगवान की बाल्य लीला ही नहीं है, तुरंत विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं और उनको लेके चले जाते हैं, तो एक दो लीलाएं केवल वो बड़े हो गए, अपने पिताजी का आज्ञा पालन करते थे और
हाँ
समझे थे, चार पांच लोगों में ही बताया गया ऐसे
क्योंकि बाकी इतनी और महत्वपूर्ण चीजें बतानी थी। प्रभु रामचंद्र की बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार में वाल्मीकि रामायण में नहीं है, सही, परंतु श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कितना है? काफी है, विस्तार में है। क्या कारण हो सकता है?
राम एक्चुअली मर्यादा पुरुषोत्तम
है। हाँ ये बात है, ताकि और आगे
वो मर्यादा को स्थापना करने के लिए, और कृष्ण जो है अखिल रसामृत मूर्ति है, जो सभी रसों का सभी लीलाओं का जो बाल्य लीला से लेके सो सभी रसों को प्रकट करने के लिए लीला।
तो श्री यदि श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो उनको मर्यादा की स्थापना करनी है कि कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए, कैसे पति को होना चाहिए, राजा को होना चाहिए, पुत्र का होना चाहिए, क्षत्रिय का होना चाहिए, कैसे, तो मर्यादा कैसे होनी चाहिए इसकी स्थापना करने के लिए श्री राम का अवतार है। तो बचपन में बच्चे जो है वो मर्यादा की स्थापना नहीं करते हैं ना, बच्चे तो खेलते रहते हैं, बच्चे कौन से मर्यादा की स्थापना की का पालन करते हैं। तो उद्देश्य राम अवतार का यह है मर्यादा की स्थापना करना, इसलिए मर्यादा का पालन जिस आयु से प्रारंभ हुआ उस आयु से विस्तार में वर्णन करना वाल्मीकि जी ने शुरू कर दिया। दूसरी ओर श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम है, श्री कृष्ण कौन से पुरुषोत्तम है? लीला पुरुषोत्तम या प्रेम पुरुषोत्तम, इसलिए उनकी लीलाएं बहुत मधुर हैं। ऐसी चार भगवान श्री कृष्ण की विशेषताएं हैं जो कि भगवान विष्णु आदि के अंदर भी नहीं पाए जाते। वो कौन सी चार विशेषताएं हैं जो बहुत मधुर हैं? चार माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं? वेणु माधुरी तो ठीक है, हम सब समझ सकते हैं, भगवान का वेणु वदन जो है इतना मधुर है सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। रूप माधुर्य भी समझने के लिए बहुत आसान है, भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है, भगवान विष्णु का सौंदर्य भी कृष्ण की तरह नहीं है, यद्यपि भगवान विष्णु भी बहुत सुंदर है। फिर आती है और दो हैं जो है लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। प्रभुपाद जी इन दोनों का तात्पर्य कैसे देते हैं? लीला माधुरी प्रेम माधुरी में एक एक जैसा लगता है, क्या फर्क क्या है दोनों, क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? लीला माधुरी के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष करके उनकी बाल लीलाएं जैसे बहुत मधुर मधुर लीलाएं, तो यहां पर बाल लीला का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। और प्रेम माधुरी है कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेममय भक्तों से घिरे हुए रहते हैं, विशेष करके गोपियां। तो प्रेम माधुरी में वो माधुरी रस का के आस्वादन या लीलाओं का उल्लेख करते हैं, और लीला माधुरी में बाल लीलाओं का या पौगंड लीलाओं का वर्णन होता है। तो ये श्री कृष्ण की विशेषताएं हैं, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है, वो प्रेम पुरुषोत्तम है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान के राम की बाल लीलाओं का वर्णन इसीलिए नहीं किया कि आवश्यक नहीं थे वो अपने उद्देश्य के लिए। ठीक है। हाँ
श्रीमद् भागवतम को पुराण और को अतिनोति था तो कलयुग के लिए वो है, तो हम देखते हैं कि हमारा कोर्स में भी हम लोग यही बुक पढ़ते हैं जब, मगर ये रामायण महाभारत जो है हम लोग जब कथा करते हैं तो इसको करते हैं, तो हमको ये कैसे समझना है रामायण महाभारत और श्रीमद् भागवतम में कितना हद तक हमको रामायण महाभारत भी पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम?
नहीं अवश्य पढ़ना चाहिए, परंतु प्रधान ग्रंथ हमारे लिए भागवतम है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये तीन हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं, और इनसे संबंधित और भी जितने हैं जो प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु है इत्यादि, उपदेश अमृत है, तो इनको पढ़ना हमारा मुख्य कार्य है। और इससे अतिरिक्त अवश्य रामायण की लीलाओं को भी हमें जान लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा था कि मुझे रामायण भी रामायण का अनुवाद करने की बहुत इच्छा है, ऐसे वाक्य हैं प्रभुपाद जी के चिट्ठियों में उन्होंने लिखा है ऐसे, परंतु मुझे समय नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी के शिष्यों ने संक्षिप्त रामायण अंग्रेजी में लिखा है जिसका अनुवाद अन्य भाषाओं में भी हुआ है। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम सब पढ़ें रामायण और महाभारत पढ़ें, खास करके वाल्मीकि जी की रामायण। जहाँ तक महाभारत की बात हो वो भी हमें जानना चाहिए, कम से कम जो मुख्य मुख्य लीलाएं हैं उनके बारे में तो जानना चाहिए। हाँ हंसराज गोपाल हरे कृष्णा।
भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं या वो विस्तार हैं वो सभी में मोर पिंक दिखाते हैं, लेकिन भगवान राम के इसमें मोर पिंक नहीं आते।
मोरपंख विशेष रूप से केवल कृष्ण में होता है, कृष्ण के तस्वीर में आप देखेंगे, भगवान विष्णु में मोरपंख का इतने दिखाई पड़ते हैं केवल कृष्ण में। केवल कृष्ण ही
पेंटिंग्स में है।
पेंटिंग में दिखाते हैं क्योंकि वो कृष्ण और विष्णु की एक एकता की बात करते होंगे, परंतु मोरपंख का महत्व विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के साथ है, वो भी केवल वृंदावन में, क्योंकि वहाँ मोर के साथ वो नृत्य करते थे, उनको ऐसे ही मोर पंख मिला ना, ऐसे कई कथाएं हैं वृंदावन में। तो एक बार मोर को नृत्य करते हुए देखकर श्री कृष्ण भी उनके पास सामने गए, वो भी नृत्य करने लग गए, और मोर को इतना अच्छा लगा कृष्ण का नृत्य कि उन्होंने अपने ही पंख को उतार के दे दी, कि भेंट दे दी, तब से श्री कृष्ण ने मोर पंख लगाना शुरू कर दिया। बरहा अपीड़म, अपीड़ मतलब सर का, सर के ऊपर जो आभूषण होता है, बरहा मतलब मोरपंख, बरहा अपीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, ना ठीक है के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।